आज है 13 अगस्त दिन शनिवार। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में। मैं हूं सुशीला सिंह। रूस ने क्राइमिया में तैनात की अत्याधुनिक मिसाइलें। भारत प्रशासित कश्मीर पर चर्चा के लिए दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक।
अभी भी गवर्नमेंट दिल्ली में बैठ के कश्मीर स्थिति को लॉ एंड ऑर्डर की नजर से देख रही है। जरूरत इस बात की थी कि कोई कॉन्क्रीट बात आए जिसमें लोगों को लगे कि हाँ, हमारी बात की परवाह की जा रही है।
बांग्लादेश में हुए हमलों के बाद विदेशी नागरिकों की सुरक्षा बना बड़ा सवाल।
लास्ट 6-7 मंथ में जब फॉरेनर्स के ऊपर टारगेटेड किलिंग्स हुई, तब और हमें अडेप्टेशन लाना पड़ा कि ओके, डोंट गो आउट आफ्टर डार्क। और फिर 1 जुलाई का जो इंसिडेंट हुआ अभी, उसके बाद तो ऑफ कोर्स इट्स बीन आई थिंक बहुत शेकन अप है।
और रियो ओलंपिक में मुक्केबाज विकास यादव क्वार्टर फाइनल में और सानिया बोपन्ना की जोड़ी सेमीफाइनल्स में। ये सब थोड़ी देर में, पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। रूस और यूक्रेन के बीच क्राइमिया को लेकर आरोप प्रत्यारोप जारी हैं, लेकिन रूस ने यूक्रेन पर क्राइमिया में घुसपैठ कराने के आरोप लगाए हैं। उसके बाद से तनाव बढ़ गया है। रूस ने क्राइमिया में सैन्य अभ्यास कराने का फैसला किया है और क्राइमिया में अत्याधुनिक मिसाइलें भी तैनात करने का दावा किया है। यूक्रेन ने भी क्राइमिया के पास सैनिक तैनाती बढ़ाई है और रूस पर सैन्य तनाव बढ़ाने की भूमिका बांधने का आरोप लगाया है। अमरीकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने कहा है कि पिछले महीने एक ड्रोन हमले में अफगानिस्तान और पाकिस्तान में चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के मुखिया हाफिज सईद खान की मौत हो गई है। हाफिज सईद खान आईएस से जुड़ने से पहले तालिबान का हिस्सा रहे हैं और अफगानिस्तान में कई खतरनाक हमलों में शामिल थे। पाकिस्तान में अफगानिस्तान के राजदूत ने कहा है कि नानगरहार प्रांत में आईएस के एक अन्य कमांडर की भी मौत हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स का संचालन करने वाली संस्था IAAF की एथिक्स कमेटी ने कीनिया के ट्रैक एंड फील्ड मैनेजर माइकल रोटिच को निलंबित कर दिया है। उन पर आरोप था कि वो खिलाड़ियों को ड्रग टेस्ट के बारे में पहले ही चेताने के बदले में रिश्वत लेते थे। माइकल रोटिच को कीनिया में इसी हफ्ते गिरफ्तार किया गया था। वहीं कीनियाई धावकों के कोच जॉन अंजार को रियो ओलंपिक से वापस भेजे जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के प्रवक्ता मार्क एडम्स ने कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी।
We take note of the Kenyan NOC's decision to send home its coach immediately. So we're pleased.
हम इस बात की तारीफ करते हैं कि कीनिया ने कोच को वापस भेजने के लिए NOC देने में देरी नहीं की। कोच और इस मामले से जुड़े एथलीट की जांच के लिए अनुशासन समिति बनाई गई है। जांच चलेगी और जरूरी हुआ तो दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये थे मार्क एडम्स के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। हाल ही में रिटायरमेंट ले चुके स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम में वापस लौटने का ऐलान किया है। उनका नाम वर्ल्ड कप क्वालिफायर टीम में शामिल किया गया है। सितंबर में क्वालिफायर मुकाबलों में अर्जेंटीना की टीम उरुग्वे और वेनेजुएला के साथ भिड़ेगी। मेसी ने एक बयान में कहा कि वो इसलिए यूटर्न ले रहे हैं क्योंकि वो अपने देश से प्यार करते हैं और अर्जेंटीना की जर्सी उनके लिए मायने रखती है। दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक लियोनेल मेसी ने जून में कोपा अमरीका कप के फाइनल में टीम के हारने के बाद संन्यास ले लिया था। पाकिस्तान के पेशावर में पुलिस ने अस्पतालों से बच्चे चुराने वाले गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि ये गिरोह निसंतान दंपतियों को बच्चे बेचा करता था। गिरफ्तार किए गए लोगों में 2 स्वास्थ्यकर्मी, 1 नर्स और 1 एजेंट शामिल हैं। अधिकारियों ने BBC को बताया कि ये लोग नवजात शिशुओं को मृत बच्चों के शवों से बदलकर ले जाते थे। अमरीका के समर्थन वाले सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने तुर्की की सीमा के नजदीक मनबीज पर नियंत्रण करने का दावा किया है। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। जैसा कि आपने मुख्य समाचारों में सुना, रूस का कहना है कि उसने क्राइमिया में अपनी अत्याधुनिक मिसाइलें S-400 तैनात कर दी हैं। रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया कि क्राइमिया में घुसपैठ करवा रहा है और आग से खेल रहा है। हालांकि यूक्रेन ने इन आरोपों से इनकार किया है। साल 2014 में रूस ने क्राइमिया को यूक्रेन से अलग करवाया था। इस बीच वॉशिंगटन ने दोनों पक्षों से तनाव कम करने की अपील की है। पूरी जानकारी के साथ हरिता कांडपाल।
क्राइमिया के विवादित क्षेत्र को लेकर यूक्रेन और रूस के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। रूस ने क्राइमिया में अत्याधुनिक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करने का दावा किया है और क्राइमिया में सैन्य अभ्यास की भी घोषणा की है। 2014 में रूस ने क्राइमिया को यूक्रेन से अलग करवाया था। रूस ने यूक्रेन पर क्राइमिया में घुसपैठ करवाने का आरोप लगाया है और चेतावनी दी है कि यूक्रेन आग से खेल रहा है, जबकि यूक्रेन ने इन आरोपों से इनकार किया है और तनाव को देखते हुए क्राइमिया के पास वास्तविक सीमा पर अलर्ट जारी कर सैनिक तैनात कर दिए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय में खुफिया विभाग के प्रमुख वादिम स्काई ने कहा कि रूस यूक्रेन के साथ सैन्य तनाव की भूमिका बना रहा है। यूक्रेन के खुफिया सेवा के मुताबिक यूक्रेन की सुरक्षा को अभी उच्च स्तरीय खतरा है। सितंबर 5 से सितंबर 10 तक होने वाले कॉकसस 2016 के सैन्य अभ्यास को देखते हुए रूस अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाएगा। ये अभ्यास क्राइमिया में होगा। रूसी अधिकारियों के निर्देश पर ये बहुत जल्द हरकत में आ सकते हैं। वादिम स्काई के शब्द। पूर्वी यूक्रेन में दोनेस्क और लुहांस्क में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों की सीमाओं पर भी यूक्रेन ने सैनिक तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा शुक्रवार को क्राइमिया की तरफ बढ़ते हुए यूक्रेन के टैंकों को भी देखा गया है। इस बीच रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने क्राइमिया को लेकर तनावपूर्ण स्थिति में सुधार नहीं होने की स्थिति में राजनयिक संबंध खत्म करने के भी संकेत दिए हैं। इस तरह का बहलाव एक तरह का अपराध है जिसकी जांच स्थापित प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए। कौन लोग इसमें शामिल हैं, उनका हिसाब होना चाहिए। जहां तक राजनयिक रिश्तों की बात है तो मैं नहीं चाहता कि ये इस तरह खत्म हो, लेकिन अगर हालात में कोई बदलाव नहीं होगा तो राष्ट्रपति को ये फैसला लेना होगा। दिमित्री मेदवेदेव के शब्द। कल ही ये खबर आई थी कि रूस के सरकारी टीवी पर यूक्रेन के एक व्यक्ति को दिखाया गया जिसे कथित तौर पर गिरफ्तार किया गया और उसने कबूल किया कि वो यूक्रेन की सेना से जुड़ा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के प्रतिनिधि ने रूस को घुसपैठ के आरोपों को साबित करने की चेतावनी भी दी है। अमरीका ने दोनों देशों से तनाव कम करने की अपील की है।
क्राइमिया को लेकर रूस और यूक्रेन में बढ़ा तनाव, ये थी हरिता कांडपाल।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और अब रुक करते हैं भारत का। भारत प्रशासित कश्मीर पर चर्चा के लिए कल दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसा भी जीतना होगा। इस बैठक पर हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने श्रीनगर में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार बशीर मंजर से बात की और सबसे पहले पूछा कि इस बैठक से कश्मीर घाटी के लोगों की कितनी अपेक्षा थी और उनकी उम्मीदें कितनी पूरी हो पाई हैं।
राज्यसभा में डिबेट हुआ था कश्मीर को उसके लेके, जब यह अनाउंस हुआ कि ऑल पार्टीज मीटिंग होगी तो बहुत सारे लोग कश्मीर में देख रहे थे कि आज की मीटिंग में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खुद आ रहे हैं इस मीटिंग में, आज तक वो बहुत कम बोले हैं कश्मीर की स्थिति को लेके, तो बहुत नजरें लगी हुई थी कि क्या निकलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब देखा जाए तो उतनी कोई खास बात ऐसी नहीं आई है जो टेम्पर्स को यहाँ डाउन कर सके, जो कूल कर सके टेम्पर्स को, क्योंकि जो सजेशंस आई हैं बाकी पार्टी की तरफ से, लेफ्ट की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, बहुत अच्छी सजेशन आई हैं। कुछ पैलेट गन्स को लेके, अफसफा को लेके, डायलॉग सारे स्टेक होल्डर्स से करने को लेके, लेकिन ऑफिशियली जो स्टांस रहा लगता है कि अभी भी गवर्नमेंट दिल्ली में बैठ के कश्मीर स्थिति को लॉ एंड ऑर्डर की नज़र से देख रही है, जबकि ये उससे बहुत आगे चला गया है। तो इसलिए जरूरत इस बात की थी कि कोई कॉन्क्रीट बात आए जिसमें लोगों को लगे कि हाँ हमारी बात की परवाह की जा रही है, लेकिन वैसा कुछ देखने को नहीं मिला।
जी, प्रधानमंत्री की तरफ से ये जो बयान आया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसा जीतना होगा, इस बयान को किस तरह से देखा जा रहा है?
प्रॉब्लम ये है कि कश्मीर में लोगों को बड़ी ही बिटर एक्सपीरियंस रही है पास्ट में। बयान की हद तक तो बहुत प्यारा बयान है ये कि कश्मीर के लोगों के दिल दिमाग जीतने होंगे, लेकिन कैसे जीतने होंगे उसके लिए कोई स्ट्रेटजी बताई नहीं जा रही है। उसके हवाले से जब बात की जाती है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हों शुरू शुरू में ताकि लोगों का एतमाद बहाल हो जाए, उस पर अभी तक कोई बात नहीं आई। उस पर सिर्फ होम मिनिस्टर पिछले दिनों पार्लियामेंट भी कहा था, यहाँ भी कहा था कि पैलेट गनों पर रोक लगाई जाएगी, लेकिन पैलेट गन यूज हो रहे हैं, अभी तक यूज हो रहे हैं, आज भी यूज हुए हैं। सो प्राइम मिनिस्टर का जो बयान है बहुत ही सुंदर बयान है, लेकिन जो कश्मीरियों की पास्ट एक्सपीरियंस है उस लिहाज से वो बड़े ही स्केप्टिकल हैं इसके बारे में। वो इस पे कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं, अभी देखना चाहते हैं कि इस बयान का फॉलो अप क्या होगा।
8 जुलाई से जब से ये पूरा अशांति की स्थिति शुरू हुई कश्मीर में, उसके बाद राज्य सरकार को लेकर भी लोगों में बड़ा गुस्सा था, ऐसा बार बार बताया गया। फिलहाल जमीनी स्थिति क्या है?
देखिए, जमीनी स्थिति में कोई भी सुधार अभी तक नहीं आया है। जो 8 जुलाई से शुरू हुआ था, उसके बाद से आप देखें डेथ टॉल 60 के करीब पहुंच गया है, हजारों लोग जख्मी हैं। तो किसी भी लिहाज से आप ग्राउंड पर जब देखें, आपको स्थिति में कोई सुधार नजर नहीं आता है। लोगों का गुस्सा हर रोज सड़कों पर देखा जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई कमी अभी तक आई है।
जी, एक तरफ राजनीतिक बयानबाजी है, दूसरी तरफ लोगों का गुस्सा है, आप आगे का रास्ता क्या देख?
देखिए, आगे का रास्ता मुझे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना होगा, क्योंकि ये मान के चलना होगा कि कश्मीर एक पॉलिटिकल इशू है, ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू है, इसकी एक हिस्ट्री है। उस इशू को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रोच करना पड़ेगा कश्मीरियों की तरफ। जब तक आप सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बात नहीं करेंगे, और साथ ही साथ जब तक पाकिस्तान के साथ भी कोई कम्युनिकेशन न खोली जाए, मुझे लगता है कि हालात तो सुधर जाएंगे महीने डेढ़ महीने के बाद, लेकिन ये मसला उलझता जाएगा।
कश्मीर कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, ये कह रहे थे श्रीनगर से वरिष्ठ पत्रकार बशीर मंजर, उनसे बात कर रहे थे वात्सल राय। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों हम भारत प्रशासित कश्मीर से आपको एक विशेष श्रृंखला सुनवा रहे हैं। कश्मीर घाटी के कर्फ्यू वाले इलाकों में रहने वाले लोगों पर क्या बीत रही है, ये बता रहे हैं श्रीनगर से जाने माने लेखक निदा नवाज। सुनिए उनकी तीसरी डायरी।
कश्मीर घाटी की कल्पना करते ही सफेद बर्फीली टोपियां पहने पहाड़, आकाश से बातें करते देवदार के पेड़, दूधिया पानी की तरंगों पर मचलते झरने और घास के हरे भरे विशाल मैदान आंखों के सामने आने लगते हैं। झील डल के पानियों पर थिरकते हाउस बोटों और कश्तियों से नए नवेले जोड़ों की सरगोशियां जैसे कानों में रस घोलने लगती हैं। लेकिन ये केवल काल्पनिक उड़ाने हैं और आजकल की कश्मीर घाटी के यथार्थ से कोसों दूर। कश्मीर घाटी पिछले लगभग 5 हफ्तों से कर्फ्यू की काली खामोश चादर में लिपटी हुई है और कर्फ्यू की इस डरावनी चादर में लिपटी हैं लाखों मजदूरों, कामगारों, रेड़े वालों, कालीन बाफों, नमदसाजों, सफाई कर्मचारियों आदि की सहमी सिसकियां और लरजती आहें, जो दिन की मजदूरी करके ही अपने परिवारों के लिए दो वक्त की रोटी का प्रबंध किया करते हैं। मुझे आज सवेरे अपने कर्फ्यू से ग्रस्त शहर के बीच बसेरा करने वाले एक परिवार से मिलने का अवसर मिला। सड़कों और चौराहों पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और वहाँ से कोई परिंदा तक भी पार नहीं मार सकता, लेकिन शहर के अंदरूनी गली कोचों से कुछ लोग जान हथेली पर लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से बशीर अहमद के परिवार को लेकर कुछ ज़्यादा ही चिंतित था। बशीर अहमद जो मजदूरी करके अपने परिवार को पालता है, जब भी हमारे घर पर कोई काम होता है हम बशीर अहमद को ही बुलाते हैं। शैतान की आंत की तरह टेढ़ी मेढ़ी गलियों से गुजरकर मैं लगभग आध घंटा चलने के बाद बशीर अहमद के घर पहुंच ही गया। इन तंग और अंधेरी गलियों में दिन होकर भी रात का गहरा खामोश अंधेरा छाया हुआ था। दो कमरों पर आधारित एक छोटा सा कच्ची ईंटों का घर, जिसकी छत कोलतार के जंग लगे कनस्तरों को काट कर बनाया गया है। बशीर के घर के अंदर प्रवेश करके मेरे सामने एक दर्दनाक दृश्य था। कमरे के एक कोने में मेले कुचेले बिस्तर पर लेटी बशीर की बूढ़ी माँ खतीजा बीबी थी। बूढ़ी खतीजा पिछले 5 वर्षों से टीबी की मरीज है। पिछले 20 दिनों से उसके पास दवाई नहीं है। दवाई की दुकानें कर्फ्यू की वजह से बंद पड़ी हैं। अब कहीं से अगर दवाइयों का प्रबंध हो भी जाए तो भी बशीर के पास कोई पैसा नहीं है जिससे वो दवाई खरीद सके। कर्फ्यू की वजह से उससे कोई काम भी नहीं मिल पा रहा है। बशीर की छोटी बेटी एनीमिक पेशेंट है। पूरा परिवार बूढ़ी खतीजा बीबी के इर्द गिर्द सिमटा हुआ है। यह परिवार भी न जाने कितने ही परिवारों की ही तरह पिछले लगभग 1 महीने से केवल एक ही वक्त का खाना खाने पर मजबूर है। इस घर में लगभग पिछले 20 दिनों से एक प्याली चाय तक नहीं बनी है। बूढ़ी खतीजा बीबी की मुसलसल खांसने और करहाने की आवाज़ों के बीच मैं सोचने लगता हूँ कि इसी तरह कश्मीर घाटी में कर्फ्यू की काली चादर ओढ़े न जाने कितने परिवार बेबसी और भूख के आंसू बहाते होंगे।
कर्फ्यू की काली चादर में लिपटी है कश्मीरियों की जिंदगी, ये कहना है श्रीनगर के जाने माने लेखक निदा नवाज का।
बीबीसी इंडिया बोल।
भारत प्रशासित कश्मीर में बीते 35 दिन से तनाव जारी है। हिंसा में 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसा जीतना होगा। लेकिन कैसे कैसे बनेगी बात, क्या सोचते हैं आप? जाहिर कीजिए अपनी राय बीबीसी इंडिया बोल में। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 13 अगस्त शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1800-102-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
श्रोताओं, आज शाम 7:30 बजे इंडिया बोल में भाग लेना ना भूलिएगा। और अब रुख करते हैं असम का। असम में बांग्लादेश के हिंदू शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के मुद्दे पर नए सिरे से विरोध शुरू हो गया है। पड़ोसी मुल्कों से आए शरणार्थियों को नागरिकता देने से जुड़ा नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 में अहम बदलाव के लिए संसद में पेश किया जाएगा, लेकिन असम में छात्र संगठन इस विधेयक को जलाकर अपना विरोध जता रहे हैं। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन का साफ कहना है कि असम अब और हिंदू बांग्लादेशियों का बोझ नहीं उठाएगा। उधर असम सरकार का कहना है कि सभी हिंदू बांग्लादेशियों को असम में बसाने की बात केंद्र सरकार ने नहीं की है। एक रिपोर्ट के साथ गुवाहाटी से दिलीप शर्मा।
पूर्वोत्तर राज्य असम में बीजेपी की नई सरकार को सत्ता संभाले अभी मुश्किल से 2.5 महीने हुए होंगे, लेकिन बांग्लादेश के हिंदू शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के मुद्दे पर उसे कई संगठनों का विरोध झेलना पड़ रहा है। कृषक मुक्ति संग्राम समिति नामक संगठन के कुछ कार्यकर्ता जहां असम में बांग्लादेश के हिंदू शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर बसाने के विरोध में बेमियादी भूख हड़ताल कर रहे हैं, वहीं ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के सदस्य नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 की प्रतियां जलाकर अपना विरोध जता रहे हैं। इस बीच असमिया समाज के सबसे बड़े साहित्यिक संगठन असम साहित्य सभा ने भी बांग्लादेश के हिंदू शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के विषय पर विरोध जताते हुए कहा है कि किसी भी कारण से असम हिंदू बांग्लादेशियों का बोझ नहीं उठाएगा। अर्थात 25 मार्च 1971 के बाद असम में आए सभी बांग्लादेशी नागरिकों को यहाँ से जाना होगा, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के मुख्य सलाहकार समुज्जल भट्टाचार्य ने बीबीसी से कहा,
असम में 71 का बाद आने वाला हिंदू बांग्लादेशी और मुस्लिम बांग्लादेशी भी रहने पड़ेगा। वो असम एक छोटा राज्य है, हम लोग एकता लोध नहीं ले सके। सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट रेस्पेक्ट दी असम अकॉर्ड बिकॉज असम अकॉर्ड वाज साइन इन 85।
विरोध कर रहे संगठनों का ये कहना है कि नागरिकता अधिनियम में संशोधन के साथ ही बांग्लादेश से करीब 2.25 करोड़ हिंदुओं का यहाँ प्रवेश के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अपने सीमित भौगोलिक क्षेत्र के साथ असम ने पहले से ही 1951 से 1971 तक कई प्रवासियों को बांग्लादेश से स्वीकार किया है, इससे अधिक अब और स्वीकार्य नहीं है। हालांकि असम सरकार का कहना इससे बिल्कुल परे है। असम सरकार के लोक निर्माण विभाग के मंत्री परिमल शुक्ल वैद्य कहते हैं,
तो बांग्लादेश हिंदू लोगों ने पूछा है तो पहले देखना है कि बांग्लादेश कितना है, इधर आफ्टर पार्टीशन कितना आया है, ये तो पहले सोचना चाहिए। तो ये कुछ संगठन में बोल रहा है जो ऐसा है कि वो कोई आदमी हिंदू है, कोई आदमी बंगाली हिंदू है, तो ये उसका गलती है क्या? और बंगाली हिंदू होने से ऐसा क्या होता है कि असम में बसवास नहीं कर सकते?
लगातार 3 बार राज्य की सत्ता में रही कांग्रेस बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के पक्ष में तो है, लेकिन वह भी विरोध कर रहे संगठनों की भाषा बोल रही है। असम प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अपूर्व भट्टाचार्य का कहना है,
सरकार ऐसी कोई कानूनी व्यवस्था ले आए जो भारत में रहने वाले हर भारतीय को भी अपना महसूस हो और असम में रहने वाले हमारी जाति जनजातियों हैं उनको भी कुछ तकलीफ ना हो।
पड़ोसी मुल्क खासकर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के तहत भारत आए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को नागरिकता प्रदान करने से जुड़ा नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 फिलहाल संसद की संयुक्त समिति के पास विचाराधीन है। ये भी सच है कि इस विधेयक के पास होते ही भारत आने वाले शरणार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों का बोझ अगर केवल असम पर डाला गया तो आने वाले समय में इससे एक बड़ी समस्या भी उभरेगी। दिलीप कुमार शर्मा, बीबीसी गुवाहाटी।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, सुशीला सिंह के साथ। और अब समय है समाचार पत्रों की समीक्षा का। हरिता कांडपाल सभी समाचार पत्रों के साथ स्टूडियो आ चुकी हैं। हरिता
जी, अखबारों में सर्वदलीय बैठक जो कश्मीर पर हुई उसकी चर्चा तो है ही, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर और है जिसकी चर्चा है वो है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति का मामला है। द हिंदू अखबार ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच खुलकर जंग चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति में अड़ंगा लगाने के लिए केंद्र सरकार को खुली अदालत में लताड़ लगाई। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अटॉर्नी जनरल से अदालत में कहा कि जुडिशरी की गति को रोकने की कोशिश ना करे सरकार, ये ठीक नहीं है। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसी खबर पर एक चीज़ लिखी है कि केंद्र कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए 250 नामों को मंजूरी दे दी गई है और ये तलखी बनी हुई है जो काफ़ी समय से चला आ रहा है ये मामला। हिंदुस्तान टाइम्स ने एक खबर लिखी है कि केंद्र सरकार ने देश के सबसे गरीब व्यक्ति को वो नहीं ढूंढ पाई है और उसके लिए दिया गया 1,00,000 रुपये का चेक लौटा दिया गया है। दरअसल ये मामला पिछले साल का है। राजस्थान के एक रिटायर्ड स्कूल टीचर ने पिछले साल एक चेक दान किया था जिसे सबसे गरीब भारतीय को देने के लिए उन्होंने कहा था, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने ये चेक लौटाया और कहा कि हम उस व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाए जो भारत में सबसे गरीब व्यक्ति है। और इंडियन एक्सप्रेस एक गुजरात में दलितों की स्थिति पर एक श्रृंखला चला रही है जिसमें आज की कड़ी में कहा गया है कि गुजरात के विजापुर तालुका के एक गांव में शिक्षा दर 99% है, जो कि काफ़ी है, ज़्यादा है राज्य की जो शिक्षा दर है उसके मुकाबले, लेकिन यहां भी बहुत बड़ा भेदभाव दलितों के साथ होता है। गरबा का आयोजन जो वार्षिक आयोजन होता है उसमें दलितों के लिए अलग और सवर्ण जातियों के लिए अलग आयोजन होता है, ये एक खबर है। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि 92 साल से रेल बजट का जो परंपरा है उसमें अब उसका ट्रैक बदलेगा और अब ये आम बजट के साथ ही पेश किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है।
जी, समाचार पत्रों की इस विस्तृत समीक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरिता। और अब बात बांग्लादेश की। पिछले दिनों हुए चरमपंथी हमलों से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और व्यापार को नुकसान तो पहुंचा ही है, लेकिन इसी से जुड़ा बहुत अहम सवाल है बांग्लादेश में रहने वाले हजारों विदेशी नागरिकों की सुरक्षा का। पिछले कुछ वर्षों में कई विदेशी नागरिकों की हत्याएं हुई और गुलशन कैफे हमले में तो विदेशी नागरिक ही हमलावरों का निशाना थे। एक समय में विदेशी नागरिकों के लिए सुरक्षित माना जाने वाला बांग्लादेश में अब माहौल एकदम बदल चुका है। सुनिए ढाका से नितिन श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट।
मिस्र और अरब में रह चुकी संकलिता जब पति के साथ ढाका आईं तो प्लान सिर्फ 2 साल का था। नौकरी के साथ देश से भी दिल लगा और 4 साल निकल गए, लेकिन अब समय नहीं कट रहा है। गुलशन इलाके में इनका घर उस बेकरी के बगल में है जहाँ चरमपंथी हमला हुआ था। संकलिता बताती है,
मतलब हम जब पहले आए तब वार्निंग ये थी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा थेफ्ट्स होते हैं, चेन स्नैचिंग होती है, आप रोड पे मत चलो, ऑलवेज टेक योर कार। तो दैट वो उस समय वो बड़ी बात थी हमारे लिए। लास्ट 6-7 मंथ्स में जब फॉरेनर्स के ऊपर टारगेटेड किलिंग्स हुई तब और हमें अडेप्टेशन लाना पड़ा कि ओके डोंट गो आउट आफ्टर डार्क। और फिर 1 जुलाई का जो इंसिडेंट हुआ अभी उसके बाद तो ऑफकोर्स इट्स बीन आई थिंक बहुत शेकन अप हैं काफ़ी लोग, एक्सपैट्स, ऑल्सो द इंडियन कम्युनिटी।
हाल के हमलों को लेकर पिछले 1 साल में बांग्लादेश में कम से कम 20 विदेशियों की हत्या हुई है, चाहे वो गारमेंट व्यवसाय से जुड़े हों या फिर किसी अंतर्राष्ट्रीय NGO की तरफ से यहाँ काम कर रहे हों। पिछले वर्ष एक ही हफ्ते में 1 इतालवी और 1 जापानी नागरिक की बर्बर हत्या हुई और गुलशन कैफे हमले में तो विदेशी ही निशाना थे।
बांग्लादेश के पूर्व चुनाव आयुक्त शखावत हुसैन के मुताबिक आगे का दौर बहुत नाजुक हो सकता है।
उनका टारगेट था मैक्सिमम यूरोपियंस एंड जापानीज गवर्नमेंट, इसको चेक कर सकता है, हो सकता है 1-2 लोन वुल्फ हियर एंड देयर हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग, अगर नहीं हुआ तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट, अगर हो गया तो आई थिंक दैट हैपेंस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड।
बांग्लादेश में दुनिया के कई नामचीन अंतर्राष्ट्रीय NGO काम करते हैं, क्योंकि निशाना इनमें काम करने वाले विदेशी रहे हैं तो असर कई स्तर पर पड़ेगा। स्नेहल ने फिलीपींस से तबादला लेकर बांग्लादेश आने का फैसला लिया जिससे अहमदाबाद में रहने वाले बुजुर्ग माँ बाप के थोड़ा करीब रह सकें।
सुनिए स्नेहल सोनी जी को।
सुबह जॉगिंग करने के लिए मतलब वहाँ पे रास्तों मतलब जब वहाँ पे एक अच्छा वहाँ पे एक स्ट्रीट है वहाँ पे मैं दौड़ता था। अब ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि मत यूएन का भी यही डायरेक्टिव है, यूएन एजेंसीज भी ये कह रही हैं कि नॉन एसेंशियल ट्रैवल आप मत करिए।
हत्याओं के बाद से कई दूतावासों ने अपने नागरिकों से घरों या दफ्तरों से बाहर जाने पर सावधान रहने को कहा था। जुलाई हमलों के बाद तो उन्हें देश वापसी का भी विकल्प मिला और दर्जनों वापस चले गए हैं। स्थानीय सरकार जितने भी आश्वासन दे, कुछ विदेशी ऐसे भी हैं जो अपने घरों से बाहर निकलने की भी हिम्मत बमुश्किल जुटा पा रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश के सूचना मंत्री एहसान उल हक के अनुसार उनका देश दूसरों से कहीं बेहतर है।
हम विदेशियों को पूरी सुरक्षा देने का भरोसा दे रहे हैं। बांग्लादेश में 100,000 विदेशी रहते हैं और काम करते हैं, और मेरे हिसाब से देश छोड़कर कोई नहीं जा रहा। मुझे लगता है यूरोप और अमेरिका में चरमपंथ के हालात ज्यादा गंभीर हैं।
तमाम दिलासों के बीच बांग्लादेश में सैकड़ों ऐसे विदेशी हैं जो अपने परिवारों को वापस भेज रहे हैं, और वे जो यहाँ आकर रम गए थे अब महंगे और प्रतिष्ठित इलाकों में रहने के बावजूद भी डरे हुए हैं। नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी ढाका।
और अब खबरें रियो ओलंपिक से।
बीबीसी ओलंपिक्स रियो अपडेट।
हमारे साथ रियो से जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार नॉरिस प्रीतम। नॉरिस जी, कल तो बहुत अच्छी खबरें आई भारत के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं साइना बोपन्ना की जोड़ी की, जो सेमीफाइनल में पहुंच गई है।
जी हाँ, बहुत जबरदस्त खेल दिखाया उन्होंने, और मतलब एक हफ्ते की मायूसी के बाद कम से कम उन्होंने एक पदक की उम्मीद जगा दी है और बहुत शानदार प्रदर्शन करा। सबसे बड़ी बात है कि ब्रिटेन के एंडी मरे और हेदर वॉटसन जो विंबलडन चैंपियन है, उनको हरा के उन्होंने मुकाबला जीता है। और साथ ही अब हालांकि उनका एक मुकाबला जो वीनस विलियम और राजीव रामसों को थोड़ा मुश्किल हो सकता है, और इसके साथ साथ विकास कृष्णन ने भी अपनी एक दूसरी जीत दर्ज की और उन्होंने टर्की के बॉक्सर को हरा के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, तो उधर से भी एक मेडल की उम्मीद है। और आज से एथलेटिक्स के मुकाबले भी शुरू हुए, इसमें महिला शॉट पुटर मनप्रीत कौर और डिस्कस थ्रो तो खास कुछ नहीं कर सके, लेकिन 20 किलोमीटर की चाल में मनीष सिंह रावत ने 13वां स्थान प्राप्त किया। उन्होंने खुशी इस बात की थी, उन्होंने दो विश्व चैंपियन को हराया। सुनिए क्या कहना है मनीष रावत का।
अच्छा ही कंपटीशन था, यहाँ पे वर्ल्ड चैंपियन जो था उसे बीट किया हूँ। वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो दोनों स्पेन का और ग्रेट ब्रिटेन के था, दोनों को बीट किया, तो थोड़ा इस बात से सेटिस्फाई हूँ। इतनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं हूँ एक प्रकार से, क्योंकि मैं जो सोच के आया था और जो मैं फाइट किया 15 किलोमीटर तक, मैं अच्छा टाइमिंग दे रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं 120 करूँगा। 120 करता तो शायद मैं मेडल में रहता, बेस्ट 5-6 में रहता, और पता नहीं अचानक से क्या हो गया, मुझे वार्निंग से लग गया और लास्ट 16-17 में मेरा पेन हो गया पेट में, तो वहाँ डिस्टर्ब हो गया मैं। बस अभी इस पहला ओलंपिक था, शुरुआत थी, अभी बेस्ट 15 में आया हूँ, थोड़ा सा इस बात से सेटिस्फाई हूँ कि बेस्ट 15 में हूँ।
तो ये सबसे बड़ी जो भारतीय एथलेटिक दल भेजा था उसका कम से कम एक अच्छी शुरुआत आज हुई, कम से कम एक ये कहने को तो हुआ कि फाइनल में पहुंचा इंसान और उसने कुछ करा है। अब आगे देखना है बाकी क्या होता है, और बस उम्मीद तो अब खाली मेरे ख्याल साइना की और उन्हीं की है, उस पर डिपेंड करता है कि भारत के लोग खाली हाथ जाएगा दस्ता या कोई पदक लेके जाएगा।
जी, और हॉकी की अगर बात की जाए तो अर्जेंटीना के खिलाफ भी भिड़े, संक्षेप में बताइएगा।
हाँ, लेकिन वो अर्जेंटीना के खिलाफ जो कैनेडा से उनका जो मैच हुआ है वो मेरे ख्याल ज्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि कैनेडा जैसी टीम को हमें कम से कम 4-5 गोल मारने चाहिए अगर हम पदक के दावेदार बनना चाहते हैं तो।
जी, ये थे रियो से खेल पत्रकार नॉरिस प्रीतम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बीबीसी ओलंपिक्स रियो अपडेट।
और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। रूस ने क्राइमिया के विवादित क्षेत्र में सैन्य अभ्यास करने का फैसला किया और क्राइमिया में अत्याधुनिक मिसाइलें भी तैनात करने का दावा किया है। यूक्रेन ने भी क्राइमिया के पास सैनिक तैनाती बढ़ाई है। अमरीकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने कहा है कि पिछले महीने एक ड्रोन हमले में अफगानिस्तान और पाकिस्तान में चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के मुख्य हाफिज सईद खान की मौत हो गई है। पाकिस्तान के पेशावर में पुलिस ने अस्पतालों से बच्चा चुराने वाले गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। हाल ही में रिटायरमेंट ले चुके स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम में वापसी करेंगे, उनका नाम वर्ल्ड कप क्वालिफायर टीम में शामिल किया गया है। अमरीका के समर्थन वाले सीरिया लीडर डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने तुर्की की सीमा के नजदीक मन बीच पर नियंत्रण का दावा किया। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी हरिता कांडपाल। इसी के साथ नमस्कार भारत में बस इतना ही। आपसे 8 बजे विश्व भारती में दोबारा होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।